Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
हम पहले प्रेम कुटीर में भी जाया करते थे, इसी तरह जैसे प्रेमपुरी में आते थे। जब हम इंडिया में थे, यहां थे, तो नियमित रूप में हम बंबई में ही घुमा करते थे। 8-9 महीने तो बंबई में ही कथा करते थे, कभी प्रेमपुरी, कभी प्रेम कुटीर, कभी घाटकोपर संन्यास आश्रम, कभी वेदांत कुटीर, कभी सनातन धर्म मंदिर, कभी बिलेपार्ला संन्यास आश्रम, कभी काशीगंज जी के आनंद वन आश्रम, कभी खार के आयुष, एक कथा करते रहते, घूमते रहते थे। तो एक बार हम प्रेम कुटीर में कथा कर रहे थे, तो कोई एक सज्जन कॉपी और कलम पेन बड़ा ढेर लेके आ गया हमारे पास और रख दिया हमारे पास। महाराज, ये कागज है, कॉपी है और ये पेन है। अब ये सत्संग में आने वाले जो सत्संगी है ना, उनको दे देना। किस लिए भाई? बोले इस पेन से इस कॉपी में भगवान का नाम लिखे, भक्त लोग राम नाम लिखे, शिव नाम लिखे, राम नाम लिखे, कृष्ण नाम लिखें, कुछ भी हो परमात्मा के कोई भी नाम उसमें लिखें। क्योंकि हमने राम नाम बैंक खोल रखा है और इसके लिए हम ये मुफ्त में कॉपी देते हैं, मुफ्त में कलम देते हैं। भक्त लोग इसको लिखें, लिखकर फिर ये जमा करें, हम उसको एक जमा संग्रहालय बना रहे हैं। चले गए, छोड़कर चले गए। तब फिर हमारे पास दर्शन करने के लिए जो आता था उसको हम वही कॉपी और कलम दिया करते थे। ले कॉपी कलम, इसमें राम नाम लिखो, शिव नाम लिखो, कृष्ण नाम लिखो, कोई भी तुम्हें रुचि हो वो मंत्र परमात्मा का लिखो। तो एक लड़की आई, युवती आई, हमने उसको भी इसी तरह दिया। और सत्संगियों ने तो प्रश्न नहीं किया कि राम नाम लिखने का फायदा क्या होता है, और ने तो प्रश्न नहीं किया, लेकिन उस लड़की ने फट से प्रश्न कर लिया। महाराज ये क्या है? बोले इसमें राम नाम लिखो, पूरी कॉपी भर लो। बोले इससे क्या फायदा होगा, फट से पूछ लिया उसने। तो हमने उसको फट से उत्तर दिया, जैसे उसने पूछा वैसे हमने फट से उत्तर दिया, बेफायदा होगा। क्या फायदा होगा? तो हमने कहा बेफायदा होगा। उसने कहा कि हम समझे नहीं ये बेफायदा मतलब क्या होता है। अरे भाई, तुम जिसको फायदा कह रहे हो वो चीज नहीं मिलने वाला है इससे। तुम तो यही कहोगी ना कि तुम्हारा बेटा यदि ठीक से नहीं पढ़ता है, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, और यदि हम कह दें राम नाम से पूरी कॉपी भर लो, तुम्हारा बेटा ऐसा पढ़ने वाला हो जाएगा कि स्कूल में टॉप कर जाएगा, तो मुझे लगता है कि तुम समय फुर्सत निकाल कर भी लिख लोगे। शायद वो गारंटी तो मैं देने वाला नहीं हूं। यदि इतनी से ही तुम्हारा बेटा टॉप हो जाता तो सभी लिखने लग जाते, फिर ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। ये राम नाम लिख लो तो तुम्हारी बुढ़ौती चली जाएगी। तो मुझे लगता है कि यहां सभी के हाथ में कॉपी और कलम हो जाएगा, यदि ऐसा हो तो बुढ़ौती चली जाए। राम नाम लिख लो, सफेद बाल पूरे काले होने लग जाएंगे। है, कॉपी भर लो, सफेद बाल पूरे काले हो जाएंगे, शायद सभी लिखने लग जाएंगे, समय निकाल कर भी लिखेंगे। लेकिन ये सब तो होने वाला नहीं है उस राम नाम लिखने से, होगा। तब हमने कहा कि देखो जो तुम कह रहे हो फायदा, कर्म करके उस कर्म के जो फायदा है, लोग तो लौकिक फायदा को ही फायदा बोलते हैं ना, और इस राम नाम लिखने से लौकिक फायदा होने वाला तो है ही नहीं। तब फिर हमने कह दिया बेफायदा होगा। क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा? तो बेफायदा है, बेलाभ होगा वो। तो फिर क्यों लिखे महाराज, कोई फायदा नहीं होना है तो? अरे भाई, ये राम नाम लिखोगे तो तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा, और चित्त शुद्ध होगा तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तब तो फिर अच्छा, तब तो लिखना चाहिए। लेव जी, हर कर्म कोई ना कोई फल चाहता है, यही जीव का लक्षण है। जीव का यही लक्षण है, यही स्वभाव है, स्वरूप नहीं है, स्वभाव है। स्वभाव और स्वरूप में ही अंतर है। जीव का ये स्वभाव ही है, कोई न कोई फल के उद्देश्य से कर्म करता है, उसको संकेत किया। जीव कैसा रहे, कैसा है, फल कर्म करता, फल को उद्देश्य रखकर कर्म करने वाला जो करता है उसी को जीव कहते हैं। कृतस्य सत्तस्यैव सच्चोपभोक्ता, क्योंकि कर्म करता है फल को उद्देश्य रखकर, तो जिस फल को उद्देश्य रखकर वो कर्म करता है वो फल उसको प्राप्त होता है, तब उसको भोगता है। तो उसको ये मालूम है कि मैं जिस उद्देश्य को लेकर कर्म करता हूं उसका फल होगा और वो मुझे भोगना पड़ेगा, मैं भोग पाऊंगा, इस बात पर विश्वास करके वो कर्म करता है। शिव महिमा स्तोत्र में पुष्पदंताचार्य जी ने संकेत किया भगवान शिव के बारे में, हे शिवा, क्रतुर भ्रंसस्त्वत्त क्रतुफल विधान व्यसनिनः। कर्म यहां किया और यहां किया हुआ कर्म यही नष्ट हो जाने के बावजूद भी उसके द्वारा किए गए कर्म के फलों को आप ठीक से देने वाले होने के कारण आप कर्म फल दाता हैं, इस पर विश्वास करके ही मनुष्य कर्म फल करता है। यदि कर्म फलदाता आप न होते, अन्यथा कर्म में रुचि रखने का कोई प्रसंग ही नहीं था, क्योंकि कर्म दृष्ट है, कर्म फल अदृष्ट है। तो हर व्यक्ति कहेगा कि कर्म ये करने के लिए तुम कहते रहे हो, पता नहीं मरने के बाद मिलेगा कि नहीं। ये कर्म करो, मरने के बाद तुम्हें मिलेगा। ज्योतिषम यज्ञ करो, स्वर्ग मिलेगा मरने के बाद। यहां तुम तिल का दान करो, तिल दान करने का भी पर्व आता है, है? मकर संक्रांति में तिल दान करते हैं। तो ये कहा जाता है कि यहां जितना तिल दान करोगे, एक एक तिल के दाने के बराबर एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल तुमको मिलेगा। तो क्या भरोसा है उसको, तो जरूर अवश्य वो तिल दान करता है, उसको ये विश्वास है। कौन देने वाला है तुमको ये कर्म का फल, क्योंकि प्रत्यक्ष तो नहीं मिल रहा है, फिर कौन देने वाला है? बोले ये शास्त्र ने कहा है, परमात्मा देने वाले हैं, विश्वास है, इसीलिए फल कर्म करता। तो फल से संबंधित कर्म करता है, और क्योंकि वो फल से संबंधित कर्म करना उसका स्वभाव है, आदत है, इसीलिए वो कर्म के अनुरूप फल उत्पन्न होगा, और जो कर्म का फल उत्पन्न होगा उसको भोगना पड़ेगा, और वो भोगता है। कहीं रोकर भोगता है, कहीं हंसकर भोगता है, भोगता है। रोने वाले कर्म फल नहीं भोगते ऐसा नहीं है, है? आपके छोटे छोटे बच्चे हैं ना घर में, 2 साल के, 1 साल के, ठुमक चलने वाले हैं घर में, जब चलते हैं ठुमठुमाते हुए चलते हैं, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल तक के, उनको आप भोजन खिलाने लगते हो, तो वो कई कई बच्चे तो बड़े प्रसन्नता से आपने आप खाते रहते हैं, बड़े प्रसन्नता से। आप उसको कॉल तैयार करो, वहां करेगा, उसके मुख में डाल दो और खिलाते हुए, घुमाते हुए, मनोरंजन करते हुए खाता है। और कोई कोई ऐसे बच्चे होते हैं कि मां खिला रही है इतना स्वादिष्ट भोजन बनाकर, वो रोता हुआ खाता है, मां जबरदस्ती उसके, क्योंकि खाता नहीं, प्रसन्नता से खाता नहीं है, खिलाना जरूरी है, मां ये जानती है कि इसको खिलाना जरूरी है, नहीं खिलाएंगे तो कमजोर होगा, अब वो रुचि से खाना नहीं चाहता, तो मां जबरदस्ती उसके मुंह में ठूंसती है, और जब वो जबरदस्ती करने लगती है तो फिर वो रोने लगता है, और जिस समय जोर से मुंह खोलकर रोता है उस समय उसके मुंह में डाल देती है वो। ये केवल उस बच्चे की कहानी, बच्चे की घटना नहीं है, ये तुम हम सब की एक परिस्थिति है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि सभी कर्मों को वह प्रसन्नता से भोग लेता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि वो भोगना नहीं चाहता, लेकिन परमात्मा जबरदस्ती उसको भोगाता है, क्योंकि तूने किया है, तेरा उत्पादन है, इसलिए तुझे ये भोगना पड़ेगा, तो वो जबरदस्ती करता है, तो तुम रोते हो, जिस समय रोते हो उसी समय वो भी रोना ही तुम्हारा एक अशुभ कर्म फल भोग है, तुम जो रोते हो ये अशुभ कर्म फल भोग है। यही बात यहां कहते हैं, ये जीव का स्वभाव है, ये तुम पद का अलग अर्थ, वाच्यार्थ है। इस मंत्र में जो कुछ भी जीव के बारे में कहा जा रहा है वह जीव का वाच्यार्थ है, तुम पद का वाच्यार्थ है, मैं पद का वाच्यार्थ है। तुम्हारा मैं ये रूप कैसा है? गुणान्वय, क्योंकि गुण से युक्त हुआ हुआ है, इसीलिए यह फलकर्म करता। तुम्हारा मैं ये जो रूप है वह कैसा है? बोले फलकर्म करता है, निष्काम कर्म नहीं कर सकता है, यदि कर ले तो उसका उद्धार हो जाए, उसको फंसने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा, लेकिन फलकर्म करता है, इसीलिए ये सामान्य जीव का स्वरूप है, रूप है ये। वह निष्काम कर्म करता तो वह विशेष है, लेकिन सामान्य जीव का रूप है फलकर्म करता। सभी जीव फल से युक्त कर्म करना चाहते हैं, कृतस्य तस्यैव च सोपभोक्ता, क्योंकि कर लेता है, रागतः कर लेता है, द्वेषतः कर लेता है, विवेक से कर ले भी तो कर्म करने का ढंग जानकर कर ले भी तो फल भोगना नहीं पड़ेगा, लेकिन कर्म करने का ढंग नहीं है, बिना ढंग का कर लेता है, कई बार घर में झगड़ा शुरू हो जाता है सास और बहू का, बहू आती है झाड़ू लगाने के लिए और ठीक से झाड़ू नहीं लगाती है, इधर उधर कचरा रह जाता है, तो फिर सास को मौका मिल जाता है बड़ा होने का, ये झाड़ू लगाने भी नहीं जानती है, तेरी मां ने नहीं सिखाया है, यहां से शुरू हो जाता है। अरे मां तो तू भी है, तू भी सिखा ना भाई, है प्रेम सिखाने वाला व्यक्ति तो प्रेम से सिखाएगा ना, और सीधे कह देगी तेरी मां ने नहीं सिखाया तेरे को, अरे मां तो तू भी तो है, तू बेटे की मां है, मेरी मां बेटी की मां है, तो तेरी मां तू अपने बेटे की मां है, तो मां तू भी है, तू सिखा ले भाई, लेकिन सिखाने की अपेक्षा डांटनी शुरू करती है, झगड़ा वहां से शुरू हो जाता है। कृतस्य तस्यैव च उपभोक्ता, कर्म करना नहीं जानते इसीलिए समस्या आती है। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है, हे अर्जुन, योग का अर्थ होता है दुख से निवृत्ति, योग का अर्थ होता है दुख से निवृत्ति, और योग तभी होता है जब कर्म में कुशलता आती है, कर्म करने का जो ढंग है ढंग आ जाए, कुशलता आ जाए, कर्म करने की कला आ जाए, तब वह कर्म तुम्हारे लिए योग बनेगा, तब वही कर्म तुम्हारे लिए योग बनकर समस्त दुख की निवृत्ति का कारण बन जाएगा। लेकिन कर्म करने की कला नहीं है, कर्म करने लग जाते हो तो फिर वह योग नहीं बनता, योग नहीं बनने के कारण वही संचित आदि हो जाएंगे, क्रियमाण आदि हो जाएंगे, तब फिर वही भोग बनता है। कर्म करना नहीं जाना तो वो कर्म से भोग उत्पन्न हुआ, कर्म करने की कुशलता आ गई तो वो कर्म योग बन गया, तो दुख से वियोग होगा। कर्म योग बनता है तो दुख से वियोग होगा, कर्म योग नहीं बना तो दुख से संयोग होगा। ये गीता का रहस्य है, योगः कर्म सुकौशलम्। तुम कुशलतापूर्वक कर्म करो, जानकर कर्म करो। जानकर कर्म करो का मतलब होता है राग द्वेष रहित होकर कर्म करो। कर्म तो करो, कर्मासक्ति और फलाशक्ति छोड़कर कर्म करो। जो कोई कर्मासक्ति और फलाशक्ति छोड़कर कर्म करता है, ये कर्म की कुशलता है। कर्म करने पर भी वह कर्म फल से वह संबंध नहीं होता। जो कर्मासक्ति और फलाशक्ति को छोड़े बिना कर्मासक्ति फलाशक्ति से युक्त होकर कर्म करता है, तब फिर वह कर्म उसको बंधन में डालते हैं और वही दुख और भोग का कारण बन जाता है। गुणान भयो यह फल कर्म करता कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता स विश्वरूपः। और यही कारण है कि अनेक प्रकार के कर्म कर लेता है, अलग अलग वासना से युक्त होता है, तब फिर वह जन्मांतर में तत्तत् वासना और तत्तत् कर्म के भोग के लिए वह तत्तत् रूप धारण करता है। कोई कुत्ता बना तो परमात्मा ने जबरदस्ती उसको कुत्ते के शरीर थोपा नहीं है, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रसंग में उसने जो गलती कर्म की, रागतः द्वेषतः, वो कर्म का फल भोगने के लिए उसको तदयोनि में जाना पड़ा, तो भोग रहा है, भोगे तो अपने कर्मों से वो कुत्ता बना, किसी ने बनाया नहीं है। आप मनुष्य बने हैं तो किसी ने बनाया नहीं, अपने कर्म से मनुष्य बने। तो विश्वरूप आपके अनेक रूप होने में कारण क्या है? या विश्वरूप शब्द का अर्थ हो क्या हो गया? अनेक जन्म अनेक योनि, यही विश्वरूप है। ये विश्वरूप का अर्थ वो परमात्मा का ग्यारहवें अध्याय का विश्वरूप नहीं ले लेना, और ग्यारहवें अध्याय का जो विश्वरूप है वो भी यही है, क्योंकि उस ग्यारहवें अध्याय में जो विश्वरूप आपने देखा, अर्जुन ने देखा है, तो उसी एक विराट में कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, बिच्छू भी है, सर्प भी है, गाय भी है, भैंस भी है, है? अमृत तुल्य दूध देने वाली गाय भी वही है, विष देने वाला सर्प भी वही है, डंक मारने वाला बिच्छू भी वही है, विष को झाड़ने वाले वनस्पति औषधि भी वही है। सभी कुछ आपने वहां देखा, यानी अर्जुन ने वहां देखा, और जो कुछ अर्जुन ने उस ग्यारहवें अध्याय गीता के ग्यारह अध्याय में विराट में देखा, तो उस सबको मिलाकर विश्वरूप कहा। यदि इस पृथ्वी का कुत्ता वहां नहीं होता तो विश्वरूप नहीं होता, यदि पृथ्वी में मिलने वाले जहर वहां नहीं होता तो विश्वरूप नहीं होता, यदि पृथ्वी में मिलने वाला सर्प और बिच्छू वहां नहीं होते तो विश्वरूप नहीं होता, उसके जहर को झाड़ने वाले वनस्पति वहां नहीं होती तो विश्वरूप नहीं होता, ये सारे के सारे विश्व रूप क्या है, तो बोले एक ही जीव के ये अलग अलग समय में धारण किया हुआ जो रूप है वह विराट में एक ही बार दिखा दिया। ये तुम ये देख लो कि तुम कितने रूप बने हो, विराट में जितने रूप देखोगे वो सब तुम्हें स्मरण कराने के लिए दिखाया गया है कि अलग अलग जन्मों में, अलग अलग कल्पों में, अलग अलग युग में, अलग अलग संवत्सरों में, अलग अलग कर्मों का और कर्म फलों को भोगने के लिए अलग अलग वासना से तुमने जो जो अभी तक रूप धारण की है वह ये अर्जुन दे मेरे में देख ले ले है? अब ये समझ में नहीं आएगा अर्जुन क्या देख रहा है, ये तो कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये नहीं कह रहा कि एक समय में ये था, मैं एक समय में ये था, एक समय में ये था, एक समय में ये था, ये नहीं कहता है। आप कहते हो है? कुत्ते को देखकर आपको ये स्मृति वो आती है कभी, एक समय में मैं ये भी रूप था, ये स्मृति वो आती है, है? नहीं आती है, आनी चाहिए, इसलिए ये रूप दिखाया है, है? बंदर को देखकर तुम्हें स्मृति वो आती है कि एक समय मैं ये रूप था, स्मृति वो आती है। परमात्मा ने बंदर क्यों दिखाया, तो बोले इसलिए कि तुम इसको समझ लो, एक समय मैं ये भी था, एक समय मैं ये भी था। बंदर होकर पेड़ पेड़ में उछलता रहा और फोकट में दूसरे के खाता रहा तो भी क्या हुआ भाई, हुआ कुछ? यदि फोकट में दूसरे का खाने से कुछ होता होता तो बंदर रहता था और फोकट में खाता रहा, कुछ मिला, कुछ हुआ? दौड़े दौड़े रहने से कुछ मिलता होता तो एक समय में कुत्ता बनकर मैं दौड़ता रहा सुबह से शाम तक, कुछ मिला? माधव माधव नीतिकार ने कहा ये कुत्ते ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है, मनुष्यों को संबोधन करके कहा तुम ज्यादा दौड़ धूप मत करो, दौड़ने मात्र से भाग दौड़ से लक्ष्मी मिलती तो कुत्ते को भी मिल जाता पहले, उसको और सबसे ज्यादा मिल जाती है लक्ष्मी, खाली दौड़ धूप से नहीं मिलने वाली है। लक्ष्मी मिलने के लिए लक्ष्मी मिलने अनुरूप कर्म करना चाहिए। तो क्या करें महाराज लक्ष्मी के लिए, बोले लक्ष्मी तो परमात्मा की है और परमात्मा की लक्ष्मी को तुम भोगना चाहोगे तो परमात्मा को छोड़कर तो आएगी नहीं, तुम्हारे चाहने से परमात्मा को छोड़कर तो आएगी नहीं। हां एक शर्त में लक्ष्मी आएगी कि परमात्मा को बुला लो, यही तो कहते हैं शास्त्रकार, परमात्मा को बुला लो तो क्योंकि परमात्मा को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहती है इसलिए परमात्मा आ जाएंगे तो लक्ष्मी अपने आप नचाते हुए भी आ जाएगी, नाचते हुए आएगी वो। सविश्वरूप वही एक विश्वरूप होता है अलग अलग समय में, अलग अलग समय में अनेक रूप हो जाता है। अभी मनुष्य रूप हो न जाने कौन सा ऐसा कर्म और वासना रह जाए, कौन से ऐसे कर्म और संस्कार और वासना रह जाए, अंतकाल में कौन सी वासना जग जाए, तो न जाने उसके बाद फिर कौन से उस जन्म में जाना पड़े, वो भी तुम्हारा ही रूप होगा, वही सबको मिलाकर एक तुम्हारा रूप होगा, क्योंकि अन्य से संबंधित होने के कारण वो रूप है, स्वरूप नहीं है। त्रिगुणा त्रिवर्त्मा और वो जितने भी रूप हैं वो त्रिगुण से युक्त हैं और उसी के चलते तुम तीन मार्ग से जाने वाले होगे। त्रिवर्त्मा वर्तमान मार्ग, शास्त्रकारों ने कहा है जीवात्मा को विपत्ति कहां से आती है, कब आती है, क्यों आती है, आपदाम पंथाम इंद्रियाणाम असंयम, बड़ा सुंदर युक्ति है, सुवास है ये। जीवात्मा के मनुष्यों की इंद्रियां जब असंयमित होती हैं तब ये निश्चित समझ लो कि तुम्हारे लिए विपत्ति आने वाली है, रास्ता खुल गया विपत्ति का। इंद्रियों का असंयमन होना तुम्हारे लिए आपत्ति विपत्ति का आह्वान है, निमंत्रण है, कंकोत्री है। तुम्हारी वाणी का असंयम तुम्हारे लिए विपत्ति का निमंत्रण है। वो द्रौपदी के वाणी के असंयम महाभारत युद्ध का निमंत्रण कंकोत्री हुआ कि नहीं? अंधे का बेटा अंधा ही हो गया है, क्या जरूरत था? थोड़ा संयम कर लेते, महाभारत रूपी विपत्ति उसके सामने नहीं आती। कंकोत्री तैयार किया किसने? द्रौपदी ने। किसके द्वारा? वाणी का असंयम। आपदाम पंथाम इंद्रियाणाम असंयम तदेव संयम संपदाम। इंद्रियों का संयम ही सुखमय जीवन के लिए कंकोत्री है। तुम्हारे इंद्रियों का संयम होना तुम सुखी हो गए। इंद्रियों का विषम तुम्हारे विपत्ति का कारण बनता है। तो त्रिवर्तमा कौन से मार्ग से तुम कहां जाओगे, किस रूप में जन्म लोगे, ये मार्ग पर निर्भर करता है। त्रिवर्तमा ने त्रिमार्ग, ये मार्ग का वर्ण पितृयान देवयान और जायस्व मृगस्व। इस मार्ग के बारे में थोड़ा कल चर्चा करेंगे, समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम।